أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. اگرچہ یہ میری ہیبٹ تو نہیں ہے کہ اپنی پرسنل سفرنگز آپ کو بتاؤں، لیکن چونکہ آج رات کی مجلس ذرا شارٹ بھی رہے گی اور تھوڑا سا آپ کو یہ لگے گا کہ ذرا آرگنائز وے میں نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ چیز آپ کو اب ریمائنڈ کرانا ضروری ہے. بہت لمبی مور دین 26 آورز کی فلائٹ جو لیٹ بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے شہر میں پہنچا ہوں، اور اگرچہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ جملہ نہ سنوں کہ اٹس نن آف آور بزنس، آپ لیٹ ہوئے تو یہ آپ کا پرابلم، آپ نے فلائٹ اتنی لمبی لی تو یہ آپ کا پرابلم، کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ کامنٹ نہ آنے پائے، لیکن پھر بھی میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تو حج کا اتنا ٹائرنگ سفر، اور اس کے فوراً بعد پھر یہ والی ٹریولنگ، شاید آج رات کی مجلس آپ کو ویسی محسوس نہ ہو جس کے لیے آپ ایک سال سے انتظار کر رہے ہیں. اچھا، اب آئیے پہلے بات تو یہ کر لوں، ایک جنریشن پوری اس لیسٹر میں گزر گئی ہے کہ جس کی میں خدمت کرتا آ رہا ہوں. آج سے کوئی 25 سال پہلے، کوارٹر سینچری اگو، فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ آیا تھا، اور ماشاءاللہ اب اس دفعہ آ رہا ہوں. یہ اتنا اچھا زخانہ، یہ اتنا اچھا امام بارگاہ، وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن اب آپ کی آبادی، آپ کا نمبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ چھوٹا بھی پڑ رہا تھا، وہاں کے پرابلمز بھی تھے. تو اگرچہ لاسٹ ایئر 1428 ہجرہ کا محرم یہاں ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں، یہ 1429 ہجرہ کی فرسٹ نائٹ، تو اللہ ان تمام مومنین اور مومنات کو جزائے خیر دے کہ جن کی کوششوں اور ایفرٹس کے نتیجے میں لیسٹر میں یہ اتنا شاندار امام بارگاہ بنا. کچھ لوگوں نے ڈونیشنز دیے ہوں گے، کچھ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا ہوگا، کچھ لوگوں نے اپنی ایڈوائس دی ہوں گی. انشاءاللہ یہ سب اس دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ پائیں گے، اور آخرت میں تو ان کا ریوارڈ اپنی جگہ محفوظ ہے. لیکن ایک بات ابھی سے سن لیجیے، اور ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایئر تھوڑا بہت آپ نے اس کو فیل بھی کیا ہو، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً جب یہ ایک نیا امام بارگاہ بنایا گیا تو بہت پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہوگا، اور آپ کی جو نیکسٹ 10 یا 20 ایئرس کی نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو بنایا گیا ہوگا. میں فیوچر کو دیکھ تو نہیں سکتا ہوں، علم غیب تو میرے پاس نہیں، لیکن ساری دنیا کا میرا ایکسپیرینس یہ کہ جیسا بھی امام باڑہ یا عزا خانہ بنایا جائے، اور جتنی بھی اس کے بارے میں فیوچر پلاننگ کر لی جائے، ہر امام بارگاہ، ہر عزا خانہ ود ان 5 ایئرس وہ چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر آدمی یہ سوچتا کہ اب اس سے بڑی جگہ پہ جاؤ. نارتھ امریکہ جہاں پہ لینڈ کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت ہی سستی بھی، 20 साल और 25-25 साल के लोगों ने प्लानिंग की कि आज हमारा नंबर ये है, आज हमारी पॉपुलेशन ये, अब एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ कि 20 साल तक हमें फिर जरूरत ना पड़े कहीं और जाने, और 2 साल के अंदर जगह कम पड़ने लगी, और ऐसा होता ही रहेगा, इसलिए कि हमारे पास हदीसों में भी ये मौजूद है कि यकीनन ये हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा की वो दुआ है कि अल्लाह उनके लाल का मातम करने वाली ये कौम को पैदा करेगा और इनकी तादाद हमेशा बढ़ती चली जाएगी। आप कितना ही वेल प्लान्ड होके कोई प्रोजेक्ट क्यों ना बनाए, हुसैन के आजादारों की तादाद बढ़ती जाएगी। और ये भी जहन में रखिएगा, ये 1429 हिजरा का मुहर्रम जो शुरू हो रहा, तो ये भी जहन में रखिएगा कि जहां जहां पे आजादारी हो रही है हर उस जगह पर भी लोगों की तादाद बढ़ेगी। और ये भी जहन में रखिएगा कि जहां जहां आजादारी हो रही वो जो प्लेसेस हैं, वो जो जगह हैं, उनकी तादाद भी डबल और फिर 10 टाइम्स और फिर 20 टाइम्स होती रहेगी। एक वक्त वो आएगा कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, हर जगह सिर्फ हुसैन हुसैन और हुसैन का नाम होगा। कितनी ही ऐसी जगह जो हमने अपनी शॉर्ट लाइफ में देख ली जहां हुसैन का नाम लेना सबसे बड़ा जुर्म था, और आज ये हालत ये कि शायद उस अंदाज से हमारे और आपके यहाँ आजादारी ना होती हो जिस अंदाज से वहां पे होती है। बहुत ही छोटी सी मिसाल, सऊदी अरब, और जिस साल मैं फर्स्ट टाइम लेस्टर में आया था, आज से तकरीबन 23 इयर्स बैक जाइए, तो उसी साल हज में हमने ये भी देखी थी अहले बैत की एनिमिटी, आले मोहम्मद का नाम लेना तो मना था ही। हालत ये थी कि अभी हमारे मोहतरम इंग्लिश स्पीकर दुआए कुमैल आपका टेस्ट ले रहे थे, और दुआए कुमैल के से रिलेटेड एक सवाल किया था। ये दुआए कुमैल जो पूरी दुआए कुमैल में शुरू से लेके आखिर तक कहीं भी अहले बैत का ना जिक्र है ना फजाइल, बिल्कुल आखिरी लाइन में जाकर वह आले ही का एक लफ्ज आ जाता है, वरना शुरू से लेके आखिर तक इस दुआए कुमैल में आले मोहम्मद का कोई तस्किरा नहीं। यहां तक कि कुछ ऐसे मोमिनी ने कराम भी, आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन है कुछ ऐसे मोमिनी ने कराम जो इसीलिए दुआए कुमैल नहीं पढ़ते कि उनको ये फील होता है कि दुआए कुमैल किसी वहाबी की बनाई हुई दुआ है, नऊज़ु बिल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह, कि इसके अंदर कहीं आले मोहम्मद का तस्किरा ही नहीं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि हज करने वाले जब हज पे जा रहे हैं, और उस जमाने आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले हाजियों का कस्टम कितना सख्त होता, कितने स्ट्रिक्ट है ये, कितने ही यहाँ पे लोग मुझे अपने राइट लेफ्ट सामने हर तरफ नजर आ रहे हैं जिन्होंने 20 साल पहले हज किया और इस साल का भी हज किया, उनको तो यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही सऊदी अरब और ये वही उनकी अथॉरिटीज जो आज इतनी लीनियंट है और 20 साल पहले इतनी स्ट्रिक्ट थी। अब ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यहां पे आदमी को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होते हैं इमिग्रेशन और कस्टम, और वहां जाके देखिए तो बिल्कुल मामला उल्टा हो चुका। लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 20 साल पहले 25 साल पहले हाजी का कस्टम किस तरह होता था, उसका सामान एक एक करके निकाला जाता था, एक दुआए कुमैल किसी मोमिन के पास निकला। मफातिहुल जिनात तो यकीनत एक बड़ी डेंजरस और खतरनाक किताब थी सऊदी अरब में भी और सद्दाम के इराक में भी, लेकिन दुआए कुमैल, और जैसे ही वो दुआए कुमैल निकल आई, छोटी सी दुआए कुमैल पॉकेट साइज, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कस्टम ऑफिसर ने उसे जमीन पे फेंका और उस पर अपना पैर रखा, अपने बूट रखे, और इस तरीके से अपने जूते उस दुआए कुमैल पे चला रहा कि उसके वर्क थे, जो उसके पेपर थे, वो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब थोड़ी बहुत अरबी तो मुझे आती है, इसलिए मैंने एक बार उससे ही दरियाफ्त किया कि आखिर इसके अंदर क्या ऐसी बात कि दुआए कुमैल जिसमें सिर्फ अल्लाह का नाम है, जिसमें सिर्फ तौबा है, जिसमें सिर्फ इस्तिग़फ़ार है, जिसमें सिर्फ अपने गुनाहों पे आदमी रो रहा है और क़यामत को याद कर रहा। मेरा जहन भी उस तरफ नहीं था, लेकिन देखिए उनकी दुश्मनी, एक एक चीज उनको मालूम है, उसने फटी हुई दुआए कुमैल उठाई और उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन मुझे दिखाई, जो यही तो है कि रवा कुमैल इब्ने ज़ियाद अन अली इब्ने अबी तालिब, कि कुमैल ने रिवायत किया अली इब्ने अबी तालिब से कि वो ये दुआ बता रहे हैं। सिर्फ एक लफ्ज आया अली इब्ने अबी तालिब का और वो कहता ये लफ्ज, ये देख रहे, ये लफ्ज अली इब्ने अबी तालिब से इतनी नफरत और दुश्मनी कि इसकी खातिर वो उस दुआए कुमैल पर जो आगाजी अल्लाहुम्मा से हो रहा, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिरहमतिक, अल्लाह के नाम को भी वो मिटाने को तैयार है। ये वो सऊदी अरब। और आज से 22 साल पहले जबकि मैं बात कर रहा हूं, मैं दूसरी डिटेल में तो जा ही नहीं रहा, अगरचे अय्याम अज़ा की पहली मजलिस में आजकल मेरी एक हैबिट से बन गई कि थोड़ा बहुत सऊदी अरब का यह हज का तस्किरा इसलिए होता कि ये जस्ट आफ्टर हज अय्याम अज़ा की पहली मजलिस होती तो हो सकता है कि आज की मजलिस में भी आगे चल के एक दो बातें ऐसी आ जाएं। लेकिन फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर हूँ। और वो उसी साल जिस साल ये वाकया दुआए कुमैल का हुआ, और जिस साल में फर्स्ट टाइम फिर लेस्टर आया, और उसी साल सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर जहां आज भी मोमिनीन कराम की मेजोरिटी, और ये आप एक जहन में रखिएगा, एक मैप अगर आप रखे मेरे लिए इसका, तो उस मैप को आप देखिएगा कि ऑयल सिर्फ उन इलाकों में है कि जहां पे साहिबान ईमान की अक्सरियत। वो सारी गल्फ स्टेट देख लीजिए, वो सारा ईरान इराक का कि वो लाइन देख लीजिए, और सऊदी अरब का भी सिर्फ वो ईस्टर्न प्रोविंस। जो कुछ भी इस वक्त दुनिया के हालात, जो करंट सिचुएशन आपके सामने, जो न्यू मैप में रिलीज का रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्सा इस ऑयल का भी, अगर इसके पीछे एक और रीजन भी है, दो मेन रीजन, ये याद रखिएगा कि इस साल के अशरे में हमारी मजालिस, हमारी ड्यूटीज 21st सेंचुरी में, लेकिन करबला की रोशनी में। करबला ये हर हर मजलिस के बैकग्राउंड में रहेगी, लेकिन उस करबला को जहन में रख के हमको ये देखना कि 21st सेंचुरीज में हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, तो उसमें ये ज्यादा डिटेल के साथ बात आएगी। तो ईस्टर्न प्रोविंस मेजोरिटी है साहिबान ईमान की, मेजोरिटी है मोमिनीन कराम की, और वहीं पर यह सारा ऑयल भी सऊदी अरब का जो इस्तेमाल हो रहा है एंटी अहले बैत प्रोपेगेंडे के लिए। पूरी वहाबियत सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के जरिए से चल रही है कि जो सारी दुनिया के अंदर इनके इस्लामिक सेंटर्स। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं यहां पे जा रहा हूं, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात कि वहां पे ईरानी रेवोल्यूशन के बाद एक मातमी जुलूस सड़क पे कुछ नौजवानों ने निकाला, तो हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके उस पूरे जुलूस को शहीद कर दिया गया, और विदाउट एनी वार्निंग। ये 25 साल पहले की बात। और आज उसी सऊदी अरब में जिस अंदाज की आजादारी होती और जिस तरह से मजलिसें होती है, इवन वही शहर जहां पे आज से 22 साल पहले हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर उस पूरे जुलूस को इसलिए शहीद कर दिया गया कि वो हुसैन का नाम सड़कों पे ले रहे हैं, आज वहां पे जुलूस निकलता है, और बाकायदा उस जुलूस को प्रोटेक्ट करने के लिए सऊदी अरब की मिलिट्री आती है और वह कहती है कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप पे अटैक कर दे, कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाए और बदनामी हमारी हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 साल पहले जब मैं दारुस्सलाम से मजलिसे पढ़ के जा रहा था और दुबई एयरपोर्ट पे हमारा स्टे हुआ था, तो वहां न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी कि सऊदी अरब के इस शहर के अंदर इस साल आशूरे के दिन जुलूस निकला, और जब पहला जुलूस निकला जब वो जुलूस चल रहा था तो चारों तरफ से मिलिट्री ने आकर इसको क्वाट किया और घेरे में लिया। अब वो लोग जो जुलूस निकाल रहे थे वो तो हुसैन के नाम पे मरने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने देखा मिलिट्री आ रही तो एक बार वो रुके कि शायद हमको इनसे फाइट करना पड़े, लेकिन वो मिलिट्री करीब नहीं आई, एक डिस्टेंस पे आके रुकी। और उसके बाद वो जो मेजर था उस बटालियन का या प्लाटून का या उस कंपनी का, वो आगे आता, आगे पहले तो आलम को सलूट करता और उसके बाद कहता है कि हमसे डरे नहीं, घबरा नहीं, डोंट बी अफ्रेड, हम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं। और उस साल से लेके आज तक उस सऊदी अरब में जहां अहले बैत के नाम से इतनी दुश्मनी है कि मैंने तो खाली एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने कोट की, क्योंकि मैं डर रहा हूं कि अगर मैं इसकी डिटेल में चला गया तो मेरा आज का टॉपिक एक जगह रह जाएगा। ये वही सऊदी अरब कि जहां हर वो जगह जिससे अहले बैत का ताल्लुक, वहां पे वो टॉयलेट बनाने की कोशिश करते हैं, और तो और हजरत खदीजा का घर जो इतनी अहम इस्लाम के एतबार से इतनी अहम जगह है इबादत की, और वहां भी टॉयलेट बनाए जा रहे थे, वो तो एक इंजीनियरिंग फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से 100 मीटर का फर्क रह गया। अलबत्ता मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में ये बात आगे मजलिस में रिपीट करूंगा, मुझे फिलहाल आज के मजलिस में सऊदी अरब के हालात बयान करने से कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा कि जहां हुसैन का नाम लेना सबसे बड़ा जुर्म था, वहां भी आज हुसैन हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है। वहां आज भी जुलूस निकल रहे हैं, वहां आज भी इसी तरह से आलम निकल रहे हैं जो लोग ये कह रहे थे। जिस तरीके से रशिया में एक जमाने में स्टालिन ने कहा था ना कि पूरी दुनिया में कहीं भी अल्लाह होगा, रशिया वो जगह है जहां से हमने अल्लाह को निकाल बाहर किया है। आज हमने देखा कि खुद स्टालिन और उसका निजाम वहां से निकल गया। उसी तरह जिन लोगों ने ये सोचा था कि पैसे से वहाबियत को फैलाकर हमने अली का नाम और हुसैन का नाम मिटा दिया है, आज उन्हीं के शहरों में और आज उन्हीं के सामने हुसैन हुसैन की आवाज गूंज रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बस, अब ये जो जुमला है ना, ये मेरा आगे टॉपिक बनेगा 9 या 10 दिन, अगर हमने सही तरीके से इमाम हुसैन का इंट्रोडक्शन दुनिया के सामने करा दिया तो खाली सऊदी अरब नहीं, सारी दुनिया में हर जगह हुसैन हुसैन का नाम अभी आ जाएगा। वरना ये तो यकीन रखिए कि जब हमारे जमाने के इमाम जाहिर होंगे तो उस वक्त तो सारी दुनिया में सिर्फ हुसैन ही का नाम चल रहा होगा। तो इस वक्त अजाखाने छोटे पड़ रहे हैं। 20-20 साल बाद के जो जहन में प्लान करके इमाम बाड़े बनाए गए हैं वो 2 साल के अंदर फुल हुए जा रहे हैं, जहां के बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता था कि वहां भी कभी आजादारी पहुंच सकती है, वहां भी आज हर तरफ हुसैन का नाम गूंज रहा है, हुसैन का नाम चल रहा है। मगर एक बात ये याद रखिए कि जब ये हुसैन का नाम हमारी जबान पे आए, और मैंने जो अभी बात कही वो इसलिए कही कि हम और आप इस 21st सेंचुरी में जिंदा, वरना हुसैन का नाम तो अव्वल दिन से इस दुनिया में लिया जा रहा। पहली मजलिस में अक्सर ये रिवायतें आपने सुनी होंगी कि जब आदम को इस दुनिया में उतारा गया और जो लोग हज करके आए वो अभी अभी अराफात के मैदान में और सफा पहाड़ी पे ये रिवायत सुन के आए होंगे कि आदम को जब इस दुनिया में उतारा गया तो आखिर में वो ढूंढते ढूंढते मक्के की जमीन पे पहुंचे, मगर जब वो इस दुनिया के अंदर जन्नत से इस दुनिया में उतरे, कहां उतरे? बाज उलमा कहते हैं कि श्रीलंका में, और बात कहते हैं कि अराफात पहाड़ी पर, और बात कहते हैं सफा पहाड़ी पर। ये डिटेल छोड़ दीजिए, ना मेरे पास टाइम है ना इसकी आज जरूरत। आदम जब इस दुनिया के अंदर चल रहे थे और मक्के को ढूंढ रहे थे और अपनी बीवी हव्वा को सर्च कर रहे थे, तो चलते चलते एक जगह आदम के पैर में ठोकर लगी और खून जारी हो गया। घबरा के कहा, परवरदिगारा ये कौन सी जगह है कि जहां इस तरह से मैं जख्मी हुआ हूं? कहा कि ये करबला की जमीन है, और ये वो जमीन है कि जहां पे जो तुम्हारा सरदार है उसका नवासा इस तरह शहीद किया जाएगा। ये पहली मजलिस है जो इस दुनिया में इस तरह पढ़ी जा रही है कि मजलिस पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मजलिस सुनने वाले हजरत आदम है। जब तूफान नूह आया, और जैसा कि अभी इस मजमे में मुझे कुछ वो फेसेस भी नजर आ रहे हैं जो इस साल हज के मौके पे करबला और नजफ की जियारत करके आए, तो नजफी में तो वो जगह है कि जहां से पहली बार वो पानी निकला जो तूफान नूह बन गया। जब तूफान नूह आया और हजरत नूह की कश्ती जो प्रोटेक्शन थी उस जमाने के लिए, अमान जो उसमें बैठ गया, वो हर खतरे से बच गया, लेकिन वो इस पानी पे बह रही है क्योंकि ये प्रोटेक्शन देने वाली है तो बहुत स्मूथ चली जा रही है। मगर एक जगह जाके ये कश्ती इस तरह हिलने लगी कि ऐसा लगा कि अब डूबी और अब डूबी। हजरत नूह का दिल घबरा गया, परवरदिगारा ये कश्ती सारी दुनिया में चल रही है, यहां पे इस कश्ती को ये प्रॉब्लम क्यों हो गया? कहा इसलिए कि ये करबला की जमीन है जिसपे इस वक्त ये कश्ती चल रही है, और ये वो जगह है कि जहां तुम्हारे सरदार का नवासा इस मजलूमियत के साथ मारा जाएगा। एक तरफ तूफान नूह है और दूसरी जानिब रब्बुल आलमीन दूसरी मजलिस नूह और नूह की कश्ती में बैठे हुए लोगों के सामने पड़ रहा है। हजरत इब्राहिम बाबुल बहुत करीब है ना वहां से, हजरत इब्राहिम की बर्थ प्लेस, हजरत इब्राहिम घोड़े पर बैठ कर गुजर रहे हैं, घोड़ा चल रहा है, एक बार घोड़े ने ठोकर खाई, हजरत इब्राहिम घोड़े से जमीन पे गिरे, पेशानी पे जख्म पैदा हुआ, ब्लडिंग शुरू हो गई। घबरा के कहा, खुदा बंदा ये कौन सी जमीन है? एक मरतबा जवाब मिला, इब्राहिम ये करबोबला की सरजमीन है और यहाँ पे तुम्हारे सरदार का नवासा शहीद किया जाएगा। हजरत सुलेमान नबी जिनकी सारी दुनिया पे हुकूमत थी, हत्ता ये कि समंदर और हवा पर भी हुकूमत थी, उनका तख्त बहता चला जा रहा। अभी हमारे मोहतरम इंग्लिश स्पीकर अव्वलुल अव्वलीन की जो तशरीह कर रहे, और बता रहे थे कि जो चीजें भी आज दुनिया में, लेकिन अव्वल कौन है? तो आज जिस अंदाज से एयर ट्रेवल का कंसेप्ट है, हजरत सुलेमान का तख्त हवा पे बह रहा, वो जमीन पे नहीं है, वो समंदर में नहीं है, वो हवा पे बह रहा, उसको हवा लेके जा रही है और बड़े स्मूथ तरीके से चला जा रहा है जैसे एयरक्राफ्ट जाता है, एयरप्लेन जाता है। मगर एक ऐसी जगह कि जहां पे ये तख्त गोया तकरीबन उल्टा हो गया, 45 के एंगल पे झुका, सुलेमान नबी घबराए कि शायद मैं स्लिप होके जमीन पे गिर जाऊंगा। घबरा के कहा, खुदा बंदा ये कौन सी जगह है? कहा, सुलेमान ये कर्बोबला की जमीन है। गर्ज ये कि हमारे पास हजरत मूसा की रिवायत, हजरत दाऊद की रिवायत, हजरत ईसा की रिवायत, एक एक नबी के बारे में वाकया मिलता है। तो ये तो उस जमाने से मजलिस का सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैंने ये सोचकर कि हम और आप 21st century में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त की एक आध करंट एग्जाम्पल दी, तो आदम से लेके खातम तक और हमारे रसूल से लेके जुहूर इमाम तक इस दुनिया में हर जगह हुसैन का नाम लिया जा रहा था, लिया जा रहा है और इंशाल्लाह कयामत तक यही नाम चलेगा। मगर अब इसके बाद जब ये हर जगह हुसैन का नाम लिया जा रहा, तो एक सवाल ये पैदा होता कि इतना ज्यादा हुसैन का तस्किरा इस्लाम हमसे क्यों करवा रहा? यकीनन हुसैन का अपना स्टेटस, हुसैन की अपनी कुर्बानी, मगर इसके अलावा इसमें हमें भी एक बहुत बड़ा स्टेटस मिलना। आपने अक्सर ज़ियारत वारिसा के आखिर में ये जुमला पढ़ा होगा, फया लैतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम। बस यही मेरा टॉपिक बनने वाला है बाद की 10 मजलिसों। ये असल में है क्या? ये असल में उस मोमिन के सवाल के जवाब में, एक मोमिन ने सवाल किया, उसको रिप्लाई दिया सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और जिसने भी करबला के वाकये पर रूटीन और हैबिट नहीं, दिल की गहराई से गौर किया और गम मनाया, तो यकीनन ये सवाल उसके जहन में भी आएगा। ये सब मोमिन सवाल करता है कि फरदंद रसूल, कितना मेरा दिल चाहता है कि काश आशूर के दिन 10th of Muharram 61 हिजरा मैं भी करबला के मैदान में होता और अपने आका हुसैन के सामने अपनी जान देता। किसी आदमी का जन्म, किसी आदमी की बर्थ उसके अपने कंट्रोल में नहीं। अल्लाह ने आखिर हमें क्यों इस वक्त पैदा किया? उस वक्त मैं पैदा होता और अपने आका के सामने अपनी जान देता, अपने आका के सामने अपने आप को कुर्बान कर देता। इमाम ने फरमाया, ये वाकन तुम्हारे दिल में ख्याल आता? कहा कि ये फरजंद रसूल, कम अज कम जब आशूर का दिन आता है सारा दिन मैं ये सोचता रहता कि यहां बैठ के गम कर रहा हूं, काश 61 हिजरा के करबला में होता। इमाम ने कहा, जब करबला वाले तुम्हें याद आए और तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हो कि काश मैं 61 हिजरी में करबला में होता, तो बस इतना कह देना, फया लैतनी कुंतु माकुम, ऐ करबला के शहीदों, काश मैं तुम्हारे साथ होता, वाफूजा माकुम, तो तुम्हारे साथ मैं भी इतने हाई स्टेटस को पाता। मोमिन ने कहा, मौला ये कहने से क्या होगा? कहा, अगर जबान से कह रहे और दिल में भी तुम्हारे ये ख्याल है, तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हें करबला वालों का साथी बनाएगा। और यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन करबला वालों का साथी अल्लाह बनाएगा कब? आखिरत और कयामत में भी और इसी दुनिया में भी, जब आफ्टर जुहूर इमाम जमाना करबला का लश्कर दोबारा आएगा, जिसकी डिटेल रिवायतों में आई है। और उसमें एक जुमला ये भी है कि जिस इमाम ने, मैं रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूं इसलिए कि आज न टाइम ऐसा है और न ही मैं फिजिकली इतनी लंबी मजलिस पढ़ने के काबिल हूं, सिर्फ एक बात, मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिन इमाम मासूम ने हमें डिटेल बताई कि करबला का लश्कर जब वापिस इसी दुनिया में आएगा, नॉट इन आखिरा, आखिरा तो है, इसी दुनिया में आएगा आपका जुहूर, तो उन्होंने ये भी बताया कि ये लश्कर thousands and thousands and thousands of सिपाही इसके अंदर होंगे। सुनने वाले मोमिन ने फौरन सवाल किया था, मौला उस वक्त तो करबला में तकरीबन 100 आदमी थे, 72 या 100 या 108, लेकिन बहरहाल अराउंड 100 सौ थे, और आप कह रहे हैं कि जब वापिस आएंगे तो हजारों वापिस आएंगे, ये मौला कैसे होगा? करबला की आर्मी का रिक्रूटमेंट क्या अभी भी जारी? करबला की आर्मी में क्या अभी भी आदमी अपने आप को रिक्रूट कर सकता है और ज्वाइन हो सकता? इमाम ने फरमाया, हाँ, जिसने ये जुमला कहा फया लेतनी कुंतो मा को, खाली जबान से नहीं कहा बल्कि डेप्थ ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से ये कहा, करबला वालों काश मैं तुम्हारे साथ होता। मगर एक जुमला और सुनिए जो मेरा टॉपिक है, और अपने जमाने में करबला की ड्यूटी को पूरा किया। जब कभी आका हुसैन आएंगे तो अकेले सिर्फ 61 हिजरी के 72 आदमियों को लेके नहीं आएंगे, 1429 हिजरा या 2008 के जमाने में भी जो जो मोमिन करबला के हवाले से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा, चाहे वो लबनान के हिजबुल्लाह हो और चाहे वो इराक के साहिबान ईमान हो और चाहे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो मोमिनीन कराम हो, कि जिनके हालात की डिटेल तो आपके सामने आती भी नहीं है, ये सब हुसैन की फौज में शामिल होंगे। अल्लामा मजलिसी अपनी एक किताब में एक वाकया कोट करते हैं, गर्चे ये वाकया है तो मौला के रेफरेंस से, मगर करबला पे भी यही रूल अप्लाई हो रहा। और वो वाकया क्या, वाकया ये कि अल्लामा मजलिसी एक बहुत बड़े आलिम का तस्किरा कर रहे हैं कि वो अपने बेटे के साथ मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने गए। और मस्जिद कूफा वो मस्जिद है कि जहां पे मक्के और मदीने के बाद नमाज का सवाब भी सबसे ज्यादा, और जो अक्सर मराजे कहते हैं कि एतिकाफ तो हो ही सकता है दुनिया की सिर्फ चार मस्जिदों, उसमें मक्के और मदीने के बाद तीसरे नंबर पे मस्जिद कूफा आती। मस्जिद कूफा की अहमियत का अंदाजा इससे करें कि ट्रेवलर या मुसाफिर सफर में हर जगह चार रकत की नमाज दो रकत पढ़ता, लेकिन चार जगह दुनिया की ऐसी हैं कि जहां पे उसे पूरी पूरी नमाज पढ़ने की परमिशन है ट्रेवलर मुसाफिर को भी, जिसमें मक्का और मदीना तो समझ में आता है, करबला समझ में आता है, फिर मस्जिद कूफा भी है। पूरे इसके एक घंटे के फजाइल हो सकते लेकिन जरूरत नहीं, वहां सारी सारी रात लोग इबादत करते। मैं अपने वालिद के साथ, वालिद एक बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लामा मजलिसी इस वाकये को लिख रहे हैं, बेटा कह रहा मैं अपने वालिद के साथ सारी रात इबादत कर रहा था और भी कुछ लोग इबादत कर रहे थे, करीब में एक अरब बैठा था। एक बार इबादत करते करते उसको जरा सी नींद आ गई, एक मस्जिद के अंदर पूरी रात जाग रहा, दो मिनट के लिए नींद आ गई। जो तमाम मराजे कराम, मीना के बदले अगर आप मक्के में इबादत करें तो उसमें जो एक ऑप्शन देते हैं कि दो चार मिनट आप सो सकते हैं। तो जब उसको नींद आ गई तो एक बार उसके सर से उसका अमामा गिर गया। ये खाली उलमा के लिबास का हिस्सा नहीं था, पहले आम अरब भी पहनते। जब अमामा गिरा तो हमने देखा कि उसके सर पे एक जख्म है और बिल्कुल ताजा जख्म, ऐसा लगता है कि ये दो चार पांच दस दिन पहले की बात। अब ये चार सेंचुरी पहले मेडिकल साइंस, सर्जरी, ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, किसी चीज में इतनी डेवलपमेंट और तरक्की नहीं थी, तो जख्म बिल्कुल ताजा ताजा नजर आ रहा। मेरे वालिद घबरा गए। ये भी एक हक होता है आपके बराबर बैठने वाले का। मौला के हालात में पढ़िए, यहूदी के साथ भी सफर करते हैं थोड़ा सा, और जहां से रास्ते अलग होते हैं तो थोड़ी दूर उसके साथ चल के उसको खुदा हाफिज कहते हैं, और कहते हैं कि रास्ते के मुसाफिर का भी एक हक है, मस्जिद में बराबर में बैठने वाले का भी एक हक है। खैर, तो अब उसके सर पे जख्म देखा, वालिद ने घबरा के पूछा, खैरियत तो है, ये जख्म कैसे लगा, कहां लगा, क्या तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट पेश आया? कहा कि ये सिफीन की लड़ाई का जख्म। सिफीन कब? 14 सेंचुरी पहले मौला के जमाने की लड़ाई। और ये वाकया कब का है? सिफीन के 8 सेंचुरी बाद का है, 800 साल बाद का। मेरे बाबा पूछ रहे हैं जख्म कैसे लगा, कह रहा है ये सिफीन की लड़ाई का जख्म है। सिफीन की लड़ाई इस्लाम में बहुत अहम एक लड़ाई। याद रखिएगा कि मैं ड्यू टू सम रीजन पैगंबर के जमाने की जो जंगें उनमें हुनैन की जंग को बहुत अहमियत देता हूं, और इसको जरा डिटेल में पढ़िएगा, हमारे यहां बद्र, ओहद, खंदक, खैबर तक जिक्र होता, हुनैन बहुत इंपॉर्टेंट। बल्कि आजकल सारे वहाबियों ने जो यजीद के खानदान के लिए एक एक्सक्यूज ढूंढा, उसके लिए तो हुनैन की लड़ाई को समझना और अहम। आपके यहां लास्ट ईयर डीएम टीवी के ऊपर जो प्रॉब्लम हुआ, और इस साल मदीना मुनव्वरा में ओहद के मैदान में थ्रू आउट द ईयर
हज का आखिरी वीक छोड़कर पूरे साल ओहद के मैदान में जनाब हमजा की कब्र के सामने प्रॉब्लम रहा। और वो क्या प्रॉब्लम रहा, वो ये कि जब जनाब हमजा का हम जिक्र करते हैं और जियारत पढ़ते हैं जो बुक में लिखी, तो उसमें ये जुमला भी है कि अल्लाह की लानत हो आपके कातिलों पर ऐ शुहदाए ओहद। और ये कौन थे, ये यजीद का दादा, ये कौन थे, ये यजीद की दादी का हिस्सा था, रोल था, कितना इंपॉर्टेंट हिंदा। पूरा साल जंग ओहद का जो मैदान है मदीने में, वहां भी ये इंसिडेंट हुआ। और लास्ट ईयर तो आपके डीएम चैनल में भी ये बहस आई थी एक और एंगल से। वो क्या, वो आप एक दो आदमी नहीं कह रहे, नियरली एवरी ग्रुप किताब छीनते और आने के बाद एक आर्गुमेंट करते। वो कहते हमने माना कि अबू सुफियान ने बहुत जुल्म किए और हमने माना कि मुआविया ने भी इस्लाम के खिलाफ जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन जिस दिन मक्का फतह हुआ रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दी। जिसे रसूलुल्लाह माफ कर दे, तुम कौन हो उसको क्रिटिसाइज करने वाले। और आज 1400 साल या आफ्टर 1400 ईयर्स उसके ऊपर लानत भेजने वाले। अब रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का पे सबको माफ कर दिया। ये बात तो हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को मालूम, बल्कि अभी जो हमारे मोहतरम इंग्लिश ऑरेटर इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह का तस्किरा कर रहे, जब ईरान का रेवोल्यूशन आया था बिल्कुल शुरू शुरू में, इमाम खुमैनी पर ये क्रिटिसिज्म तो अपने मोमिनीन करते थे कि रसूलुल्लाह ने तो मक्के के दिन सबको माफ कर दिया, और ये नायब रसूल होने के बाद क्यों इस तरह से लोगों को हैंग कर रहे हैं और सजा दे रहे हैं। अब मैदान ओहद हिंदा और अबू सुफियान उनकी जानिब से एक आर्गुमेंट ला रहा, और गालिबन लास्ट ईयर भी डीएम चैनल में जब इमाम अली की सीरियल दिखाई जा रही थी तो यही एक एतराज हुआ था कि जिसे रसूलुल्लाह माफ कर दे फतेह मक्का को, तुम कौन, तुम्हारी क्या स्टेटस ऑफ पोजिशन कि उस पर क्रिटिसाइज करो। अब ये तो बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि जंग हुनैन में इन लोगों ने फिर वही किया था जो बद्र ओहद में किया, और हुनैन की जंग फतेह मक्का के बाद हुई थी। चुनाचे अगर फतेह मक्का में चैप्टर हम क्लोज भी कर ले, तो उसके बाद भी अगर वही गुनाह कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वही गलती कर रहे हैं, ये हुनैन की लड़ाई। और दूसरा इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सिफीन की लड़ाई, जब इसी मुआविया, इसी अबू सुफियान और हिंदा का बेटा मुआविया इमाम अली के अगेंस्ट आ रहा, और इमाम अली को ये जुमला कहना पड़ा कि अल्लाह अल्लाह आज ये दिन भी आ गया कि अली का नाम मुआविया के साथ लिया जा रहा। अरे दो चीजों को कंपेयर किया जाए, जरा सा तो मैच होना चाहिए। मुआविया जैसे आदमी के साथ मेरा नाम, और अभी हमारे मोहतरम इंग्लिश स्पीकर ह्यूमन राइट्स की कुछ बात कर रहे थे। सिफीन की लड़ाई में हमारे सामने दुनिया में सबसे पहले ये चीज आई कि नहीं आई कि सिफीन की जंग जब हो रही, मुआविया की आर्मी पहले आ गई, और आते ही उसने दरिया के पानी पे कब्जा करके पानी पे बैन लगा दिया। करबला तो बाद की चीज है, उससे पहले इमाम अली और उनकी आर्मी पे पानी बंद किया गया। इमाम अली की आर्मी ने इमाम अली के ऑर्डर पर फाइट बैक दरिया को रिकैप्चर कर दिया, और उसके बाद कहा कि मौला अब तो हमारा राइट है ना, पहले इन्होंने पानी बंद किया है, आज हमने दरिया वापस लिया, अब हम इन पे पानी बंद करेंगे। मौला ने कहा फिर तुम में और उनमें फर्क क्या रहेगा, अगर तुम भी वही कर रहे हो जो वो कर रहा है, दुश्मन भी क्यों ना हो, पानी किसी पे बंद नहीं हो सकता। ये जो बेसिक नेसेसिटीज है ये ऐसे दुश्मन मुआविया तक को दी जाएंगी। बहुत डिटेल का वाकया है, लेकिन ये तो मेरी जबान पर सिर्फ इसलिए आ गया कि सिफीन की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग सीरिया जियारत पे तो हमेशा से जा रहे थे, लेकिन सीरिया जाने वाले अब सिफीन के मैदान भी जाते हैं। और जब आप वहां जाके जियारत करेंगे तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता चल ही जाएगी। ये सिफीन वही जगह है जहां हमारे यासिर शहीद हुए। ये आदमी मस्जिद कूफा में कहता है ये सिफीन का जख्म। 8 सेंचुरी के बाद, 800 साल के बाद मेरे बाबा घबरा गए, बहुत बड़े आलिम, और इतनी नॉलेज तो मुझे भी थी कि सिफीन कोई 1 वीक 2 वीक 4 वीक पहले की जंग नहीं है, 800 साल पहले 800 ईयर्स अगो। पहले तो बात ये समझे कि शायद ये आदमी मुझसे मजाक कर रहा, लेकिन देखा वो बड़ा सीरियस है। कहा कि सिफीन की जंग में तुम कहां थे, तुम्हारी तो एज ही 40 साल है। उसने कहा सिफीन की जंग की बात नहीं कर रहा हूं, हुआ ये कि एक वीक पहले अपने शहर में, अपने गांव में, अपने टाउन में मेरा झगड़ा हो गया एक ऐसे आदमी से जो मुआविया को इमाम मानता था, और वो मुआविया को प्रेस कर रहा है, इमाम अली को बुरा कह रहा। मुआविया वो आदमी है जिसने मिंबरों से इमाम अली पे लानत और कंडेम करने का सिलसिला जारी किया, और वो मुआविया की तारीफ कर रहा। आज आपको इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, वहाबियत में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। मैं अपने मौला की तारीफ कर रहा हूं। एक बार जब हमारा उसका जबानी आर्गुमेंट बहुत बड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अगर कि आज इमाम अली भी नहीं और आज मुआविया भी नहीं, लेकिन मैं अली वाला हूं, तुम मुआविया वाले हो, आओ हम और तुम तलवार निकाल के फैसला कर ले। और ये कह के हमने तलवार चलाना शुरू की। वो आदमी मुआविया वाला ताकत में मुझसे ज्यादा था, जवान भी था और तलवार चलाने का एक्सपर्ट भी था। मैंने तो मौला की मोहब्बत में जोश में आके कहा कि तलवार चलाओ। उसकी तलवार मेरे सर पे लगी, एक जख्म पैदा हो गया। लेकिन इससे पहले कि दूसरी तलवार मेरी गर्दन पर पड़ती, मैंने देखा कि घोड़े सवार तेजी से करीब आया और अपनी तलवार से उस दुश्मन इमाम की गर्दन काट के जाने लगा। मैंने घबरा के आवाज दी कि ऐ शख्स रुक जा, अपना इंट्रोडक्शन तो करा, तू है कौन जिसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। कहा मैं उसी अली का बेटा और तुम्हारे जमाने का इमाम हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे दादा की हिमायत और सपोर्ट में तलवार चला रहे थे। और याद रखो कि अगर कोई तुमसे पूछे कि ये जख्म कब कैसे लगा तो कह देना ये सिफीन की लड़ाई का जख्म है, क्योंकि सिफीन की लड़ाई चाहे 800 साल पहले हुई, लेकिन जो सिफीन की लड़ाई का पर्पस था, उसी मकसद के लिए आज तुमने तलवार चलाई। तो ये वाकया जो डिटेल के साथ अल्लामा मजलिसी ने लिखा, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। अगर मैं पूरा वाकया पढ़ता तो आपको और मजा आता, लेकिन टाइम नहीं है। तो खुलासा ये कि अब ये जो उसूल जमाने के इमाम ने बताया, एक फार्मूला दे दिया कि अगर सिफीन की लड़ाई 41 हिजरा में हुई हो या 38 हिजरा में हुई हो, और कोई आदमी 850 हिजरा में सिफीन के नाम पर तलवार चलाए और सिफीन के मकसद को आगे बढ़ाए, तो वो ये क्लेम कर सकता है कि मैं मौला अली के साथ सिफीन के मैदान में था और मैंने जख्म खाया है। आज 10th ऑफ मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आका हुसैन और आका अब्बास, आका अकबर और आका कासिम ने इस्लाम के जिस मकसद के लिए अपनी जान दी है, अगर आज आप 10th ऑफ जनवरी 2008 को लेस्टर में बैठकर भी हुसैन के उसी मिशन को पूरा कर रहे हो, हुसैन के उसी मिशन पे अमल कर रहे हो, तो आपको ये हक है, ये आपका राइट है कि आप कह दीजिए कि मैं करबला में था, मैं अब्बास के साथ था, मैं अली अकबर के साथ था। और जब आप ये कहेंगे तो यकीनन अल्लाह एक दिन उनके साथ करेगा। तो वही उसूल जो फया लैतनी कुंतों में छठे इमाम ने बताया, सिफीन की लड़ाई में जमाने के इमाम ने बताया, ये वाला उसूल, ये वाला फार्मूला हमसे अपील करता है कि आज के लेस्टर में बैठ के ये देखो कि करबला के हवाले से तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। और मैं सबसे पहली बात बहुत शॉर्ट में आज बता रहा हूं, बाकी चीजें बाद में, और वो ये कि पहली ड्यूटी जो है, डोंट फॉरगेट करबला। इसलिए कि इधर मुहर्रम का चांद आया, अजाखाने सच गए, सारे मजमे ने काले कपड़े पहन लिए, दुनिया में हर जगह इस वक्त मजलिसें हो रही, मगर जितना आप इस वक्त हुसैन का गम मनाने के लिए जमा हुए, और इंशाल्लाह कल इससे ज्यादा होंगे, और 7th ऑफ मुहर्रम को तो इमाम बड़ा भर चुका होगा, मगर याद रखिए कि जितना आप तैयार हुए हैं उतना ही दुश्मनान अहले बैत तैयार हुए एंटी करबला प्रोपेगेंडा करने के। पहली चीज, डोंट फॉरगेट करबला से मेरी मुराद ये है कि डोंट फॉरगेट आजादारी। इस वक्त करबला के लिए हम अपनी ड्यूटीज तो बाद में करेंगे, पहले करबला हमको याद तो रहे, हमारी मेमोरी में फ्रेश तो रहे। यकीनन कोई आपको करबला से दूर नहीं कर सकता, डर और खतरा आपके यूथ का, शैतान बहुत कैलकुलेटेड वे में काम करता, शैतान को कोई जल्दी नहीं है, वो आराम आराम से काम करता। फर्स्ट जनरेशन नॉर्थ अमेरिका में गई, शैतान ने उनको पहले दिन शराब नहीं पिलाई है, बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके शराब की जानिब लेके गया। वो बहुत डिटेल है, लेकिन 2 साल पहले मैं बता चुका हूँ। लेस्टर में मैंने 2 जुमले 2 साल पहले कहे, एक में जरा सी आपकी तौहीन थी कि मैंने एक एग्जाम्पल दी थी M1 और M40 की, और मैं आपसे उसकी माफी मांगू, उसको रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि आपको याद होगी। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि शराब से ज्यादा ऑरेंज जूस खतरनाक होता। अब लोगों ने मजलिस तो सुनी नहीं थी, ये जुमला कोट होता रहा। मौलाना ने कहा कि ऑरेंज जूस हराम, मौलाना ने कहा कि शराब पियो कोई वादा नहीं, ऑरेंज जूस ना पीना। नहीं, जो बात मैंने कही थी वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताया था कि कराची अर्ली 70s में मेरे वो स्टूडेंट, मेरे दर्स में रेगुलर आने वाले यूथ, जो नमाज शब के पाबंद थे, जबकि उस जमाने में नमाज शब एटलीस्ट कराची में बहुत कम पढ़ी जाती थी। और जब मैं पहली दफा नॉर्थ अमेरिका गया late 80s में, मैं जुमला कह रहा हूँ, मेंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, ये सच्चा जुमला, इसको जोक ना समझिएगा, ये भी ना समझिएगा कि मौलाना ने जरा कुछ ज्यादा एग्जीक्यूट कर दिया बात को। नहीं, बाकायदा जो 70s अर्ली 70s में नमाज शब तक का पाबंद है, वो late 80s में कह रहा है कि मौलाना एक मसला तो बताइए, मैं वाजिब नमाज भी नहीं पढ़ सकता जब तक कि कुछ ड्रिंक ना करूं, जब तक कि मैं अल्कोहल इस्तेमाल ना करूं, जब तक कि विस्की की 2-4 चुस्कियां ना लूं, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती। नमाज शब का पाबंद ऐसा शराबी कैसे बना? अब उसको जो उसने डिटेल बताई उसका शॉर्ट ये था कि मौलाना अगर कोई शराब का नाम मेरे सामने लेता मैं उसको कत्ल कर देता। मैं शराब के नाम से शराब के दस्तरखान पे नहीं आया, मुझे तो ऑरेंज जूस ने मार दिया। कि जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट बन के यूनिवर्सिटी में आया और मैंने कहा मैं मुस्लिम हूँ, बिफोर ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान कितने लोग अपने आप को इस अंदाज से मुस्लिम कहते थे, क्या आई मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मैंने कहा और मेरे दोस्तों ने कहा वी रिस्पेक्ट यू। चुनाचे जब उनकी कोई पार्टी होती थी सबके लिए अल्कोहल लाया जाता था, मेरे लिए ऑरेंज जूस। क्या वजह है कि शरीयत का मसाला ऐसी टेबल पर बैठना भी हराम है जहां पे अल्कोहल सर्व हो, चाहे आप अल्कोहल पिए चाहे आप अल्कोहल ना पिए, चाहे वो क्रिसमस पार्टी हो, चाहे वो बिजनेस लंच हो, चाहे कुछ भी हो, एक दस्तरखान पर बैठना चाहे आप में और अल्कोहल में 50 चेयर्स का फासला है, लेकिन अगर टेबल सेम है तो ये बैठना ही हराम है। वो ये सुनिए, कहा कि मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए हम ऑरेंज जूस लाएंगे और हम तुम्हारे रिस्पेक्ट करते, वी सैल्यूट यू कि तुम अपने प्रिंसिपल को इतना फॉलो करते हो, लेकिन ऑरेंज जूस पिलाया शराबियों के बीच में बैठा, इधर इसके हाथ में शराब है, उधर उसके हाथ में शराब है, दरमियान में मैं ऑरेंज जूस पी रहा हूं। पहले तो शराब की वो नफरत कम हुई जो मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेके आया था, फिर शराब मेरे लिए एक नॉर्मल चीज बन गई, एक दिन में नहीं, एक वीक में नहीं, एक साल में नहीं, 3-4 साल, और उसके बाद ये हालत है कि आज मैं नमाज नहीं पढ़ सकता बगैर शराब पिए हुए। तो शैतान को कोई जल्दी नहीं, उसने अल्लाह से कुछ चीजों की गारंटी ले ली है, जिनमें से एक गारंटी उसको ये मिली है तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। हाँ, शैतान को जल्दी होती अगर हमारी आपकी तरह से उसको मालूम नहीं होता, शायद कल मर जाए, तो भाई जितना इस आदमी को बहका सकते हो आज बहका लो, लेकिन पता है कि अभी बहुत टाइम बाकी, वो आहिस्ता आहिस्ता बहकाता है। आप आजादारी में 100% सॉलिड है, आपके बाद की जनरेशन, इसलिए कि आज का जमाना जितना इंफॉर्मेशन का जमाना उससे ज्यादा डिस इंफॉर्मेशन का जमाना। अभी ये मुहर्रम का 4 नमूदार हुआ, आजादार तो अपनी आजादारी में लगे, एंटी आजादारी एलिमेंट जो हमारे और आपके दरमियान भी प्लांट कर दिए गए, और उनकी वजह से बेचारे बहुत से यूथ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनकी बात मानते चले जा रहे हैं। अभी ईमेल सर्कुलेट होने लगेंगे, अभी इंटरनेट की डिफरेंट साइट्स पर ये आर्गुमेंट और डिबेट शुरू हो जाएगी। ये 14th century के बाद आजादारी की इतनी अहमियत क्यों? ये आलम ताबूत वगैरह इसकी क्या जरूरत? ये काले कपड़े पहनने की क्या जरूरत? ये आजादारी इसका नाम नहीं, आजादारी किसी किताब को पढ़ लेने का नाम। हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाओ, बार बार ये कहा जाएगा नाम हुसैन का लिया जाएगा, और खास तौर पर कुछ लोग जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में एक पॉन भी ना दिया हो, लेकिन हर वक्त तड़पते रहते बेचारे इस गम में कि आजादारी पे कितने मिलियन ऑफ पाउंड वेस्ट हो रहे हैं। जरा उनकी वर्डिंग तो देखिए, कितने मिलियन ऑफ पाउंड वेस्ट हो रहे हैं। बाकायदा इंटरनेट पे मैंने कैलकुलेशन देखी है कि अगर हमारी शिया कौम आजादारी के ऊपर इतना खर्च ना करे तो इतने हॉस्पिटल बन चुके होते और इतने ज्यादा लोगों को मसलन जॉब मिल चुका होता और इतनी इंडस्ट्रीज हमारी लग चुकी होती। चुनाचे आजादारी के ऊपर खर्चे को कम करो और दूसरे कोई जो हेल्दी किस्म के प्रोजेक्ट है वहां पे लगाओ। इतना टाइम आजादारी को क्यों दे रहे हो? यह है क्या, ये फकत रिचुअल्स हैं? और ये भी देखिए कि आजादारी जस्ट आफ्टर हज आती, इनमें से हर हर चीज हज के ऊपर भी सेम कमेंट्स और एतराज हो सकता। हज भी एक रिचुअल नजर आता, हज पर भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इस्लाम हज को इतना अहम वाजिब रखा। एक जुमला मैंने शुरू में कहा था ना कि नॉर्मली पहली मजलिस में मैं हज का जिक्र करता हूँ, लेकिन इस साल मैंने अपनी ये हैबिट चेंज कर दी। आजादारी के खिलाफ न सिर्फ ये कि पूरा साल प्रोपेगेंडा होता, बल्कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता और आप हजरात आजादारी की तरफ आते हैं, आपके यूथ को आजादारी से हटाया जा रहा होता और आपको मालूम भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता उन पे क्या काम हो रहा। वो भी अभी 50-50 हटेंगे, पूरे नहीं हटेंगे, लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन आएगी। चुनाचे डोंट फॉरगेट आजादारी। करबला के कॉन्टेक्स्ट में हमारी सबसे पहली ड्यूटी यही कि जिस अंदाज से आपके बाप दादा और आपके बुजुर्गों ने आजादारी का एक इंस्टीट्यूशन बना के आपको दिया, आप एज इट इज इसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करें। हाँ, अगर उसमें कोई हराम हो रहा, अगर उसमें कोई गुनाह हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से अपने मन से ये फैसला कर देना कि ये आलम गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये अजाखाना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये मातम गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इतना पैसा इसमें खर्च नहीं होना चाहिए, नजरों नियाज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आजादारी जिसकी वजह से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है इस्लामिक हिस्ट्री के दो इवेंट्स में, जो कैलेंडर के एतबार से लेस देन 2 वीक्स, गदीर का वाकया भी इस्लाम में और करबला का वाकया भी इस्लाम में। गदीर का वाकया 18th ऑफ ज़िलहिज और आजादारी शुरू होती है चांद रात यानी 1st ऑफ मुहर्रम, हार्डली 12 डेज। करबला के वाकये के विटनेस कोई नहीं थे, सिर्फ हुसैन का एक छोटा सा घर था जिसमें एक ही मर्द जिंदा था, सज्जाद। और करबला के वाकये के विटनेस, गदीर के वाकये के विटनेस 120,000 मुसलमान थे। और जैसा कि अभी आपने इंग्लिश स्पीकर से सुना कि रसूलुल्लाह ने इमाम अली को इतना बुलंद किया, इतना ऊंचा किया, दूर दूर तक पूरे मजमे ने देख लिया कि व्हाइट अंडर द आर्मपिट नजर आने लगा, इतना ऊंचा किया, 120,000 मुसलमानों को दिखाया। और उसके बाद आज गदीर कोई नहीं जानता, सिर्फ हम मोमिनीन करम को मालूम है और उनमें से भी अक्सर को डिटेल नहीं पता, लेकिन चले मालूम है कि गदीर का वाकया हुआ। और करबला का वाकया सारी दुनिया जान चुकी है, क्यों आखिर, जबकि करबला के वाकये का विटनेस कोई नहीं है और गदीर के वाकये के 120,000 हाजी और सहाबी वो विटनेस हैं। इसलिए कि गदीर के वाकये से रिलेटेड कुछ इस अंदाज का इंस्टीट्यूशन नहीं बना जो करबला के वाकये से रिलेटेड आजादारी का इंस्टीट्यूशन बनाया। ये आजादारी हमारी है जिसने करबला के वाकये को हर जनरेशन के लिए फ्रेश रखा है। जब करबला याद हो तो अगला स्टेप आएगा कि हमारा, हमारी ड्यूटी क्या, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। अगर लोग करबला ही भूल जाए, जैसे गदीर, गदीर का वाकया कितने मोमिनीन ये सोचते हैं कि गदीर के हवाले से हमारी ड्यूटी क्या। पहले तो गदीर ही याद दिलाना पड़ती है हम मुसलमानों को। तो करबला के अंदर याद रखिएगा कि आजादारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी सारी ड्यूटीज के लिए। इसको ना खत्म होने दीजिए, ना वीक होने दीजिए, ना चेंज होने दीजिए। जो फेल हराम है उसे निकालना है। मसलन अगर कहीं आजादारी में बेहिजाब औरत जाती है तो उसको हिजाब करवाना, आजादारी नहीं बंद करना है। कुछ लोग गलती को इस तरह रेक्टिफाई करते हैं कि जी वो बेहिजाब औरत तो आ रही है आजादारी में, तो बंद कर दो जुलूस, ताकि जुलूस ना हो तो ये औरत भी बाहर ना निकले। ये शैतानी तरीका है किसी गलती को रेक्टिफाई करने। हमारे यहां इंडिया और पाकिस्तान में एक जोक बहुत मशहूर है कि किसी औरत ने पासपोर्ट बनवाया, हमारे यहां चूंकि हस्बैंड का नाम बहुत अहम समझा जाता, चुनाचे उसने पासपोर्ट बनवाया मिसेस फुला फुला, वाइफ ऑफ मिस्टर फुला फुला। पासपोर्ट ऑफिसर ने गलती से वाइफ के बदले उसको विडो कर दिया, फुला मिसेस फुला विडो ऑफ मिस्टर फुला। वो घबरा गई, अपने शौहर को लेके, 6 फीट का शौहर, उसको लेके पासपोर्ट ऑफिसर के सामने गई, कहा कि आपने गलत लिख दिया, मुझे लिख दिया मैं बेवा हूं। बेवा कहा, मेरा शौहर तो जिंदा है। ऑफिसर ने कहा कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाती है, वी आर ह्यूमन, मैं अभी इसको रेक्टिफाई करके सही करता हूं। और ये कहे कि उसने पिस्टल निकाला, 3 गोलियां उसके शौहर के सीने में उतार दी, वो मर गए। कहा अब तो तुम बेवा हो गई ना, देखो गलती ठीक हो गई। मैंने लिखा था बेवा यानी विडो, तो तुम विडो हो गई हो ना, क्या ये तरीका होता है कॉमन सेंस में गलती ठीक करने का? जी वो बुला जगह जुलूस के अंदर औरतें बेपर्दा आती हैं, तो उस बेपर्दा औरत को बापर्दा बनाओ, करबला के हवाले से उसको हिजाब याद दिलाओ। ये सही तरीका है करबला का, ये नहीं है कि आपने कहा जुलूस बंद। अगर करबला के हवाले से उसका हिजाब तुमने करवा दिया, तो आज जुलूस में भी हिजाब के साथ है, कल सुपरमार्केट में भी हिजाब के साथ होगी, परसों बर्थडे पार्टी में भी हिजाब के साथ होगी। और अगर तुमने जुलूस ही बंद कर दिया, तो फिर कैसे उसको याद दिलाओगे? तो हमारे यहाँ जो रिफॉर्म का तरीका आया, ये गलत आया। जो हराम है उसको ठीक करो, लेकिन आजादारी में कोई कमजोरी ना आने पाए, एक बात। और आजकल अब आप देख लीजिए, 10 दिन जो आपके यूज को लिटरेचर मिलेगा, जो आपके यूज को इंफॉर्मेशन मिलेगी इंटरनेट से, जो आपके यूज के नाम ईमेल्स आएंगे मुख्तलिफ फोरम से, सबका आखिरी लाइन या पिंच लाइन ये होगी कि जैसी आजादारी हमारे वालिदैन करते थे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, उस आजादारी को खत्म करो। करबला के हवाले से सबसे बड़ी ड्यूटी जो हर सेंचुरी में रही है कि करबला कभी आपकी मेमोरी से न निकलने पाए, और आजादारी वो तरीका है जिससे करबला आपको याद रहेगी। फिर भी घंटा हो गया, इसलिए अगली बात मैं बहुत जल्दी से मुकम्मल कर दूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं घंटे की मजलिस पढ़ जाऊंगा। एक दूसरी बात, मगर इतना याद रखिए कि मैंने जो जुमला कहा ना कि याद के यूज, मगर एक बहुत बड़ा आजादारी के कॉन्टेक्स्ट में खतरा आपके लिए भी, बड़ों के लिए भी। और वो ये है कि आजादारी को खाली इमामबाड़े तक लिमिटेड ना कीजिए। पैगंबर की एक बहुत मशहूर हदीस है, अगर कि उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और, मगर उसमें सारा इस्लाम आ जाता। पैगंबर ने फरमाया, तुम्हें मालूम है कि यहूदी या जूस वो क्यों मिसगाइडेड हुए, क्यों गुमराह हुए? यहूदी ऐसे गुमराह हुए कि आप दिन में 5 नमाजों में 10 टाइम्स कहते सिराप अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ूब अलैहिम, खुदा बंदा हमें उनके रास्ते पे न चला जिन पे तेरा गज़ब आया है। ये कौन है? ये यहूदी ऐसे गुमराह हुए कि अल्लाह का गज़ब आया, लेकिन बेसिक फॉल्ट कहाँ था, मिस्टेक कहाँ थी? वो सच्चे नबी को मानने वाले थे, मूसा से लेके दाऊद, दाऊद से लेके सुलेमान, तमाम अंबिया को मानते थे। गलती कहां पे हुई? पैगंबर बता रहे हैं कि देखो, मिस्टेक शुरू में बहुत छोटी होती है, बाद में उसके नुकसान या कॉन्सिक्वेंसेस, खत्म मेरी बात। पैगंबर ने कहा गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने अपने रिलीजन को अपने सैनिकुआ या अपने प्लेस ऑफ वर्शिप तक लिमिटेड कर दिया, अपने अपने सैनिक गुआ से बाहर रिलीजन लेके नहीं आए, खास तौर पे उनका घर। पैगंबर का जुमला है, ये पैगंबर की वर्डिंग है, उन्होंने अपने घरों को कब्र बना दिया। असहाबे रसूल ने घबरा के पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मतलब कब्र का? पैगंबर ने कहा कब्र किसे कहते? कब्र उसे कहते हैं जहां से नेकी का कोई काम आसमान नहीं जाता। मरने वाला तो बार बार फरिश्तों से कहता है, खुदा से कहता है, खुदा बंदा आप इजाजत दे दे, आप नमाजें पढ़ लूंगा, अब रोजे रख लूंगा, लेकिन कब्र में जाने के बाद नेकी का कोई काम करो बेकार है, वो वहां से निकलेगा ही नहीं। यहूदियों ने अपने घरों को कब्र बना दिया, सारी इबादत मस्जिद में होती, सारी नेकियां मस्जिद में होती, सारा दिन मस्जिद में होता, सारी तबलीग मस्जिद में होती, घर में आए बिल्कुल चेंज, कोई नेकी हो ही नहीं रही है। अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल इस्लाम के अंदर भी कि क्यों इस्लाम ने कहा वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ो तो सुन्नत नमाज घर में पढ़ो, क्यों इस्लाम ने कहा कि औरत के लिए घर में इबादत करना बेहतर है, छोटे छोटे गोद के बच्चे वो तो घर के अंदर ही रहेंगे ना, वो देखेंगे अपने माओ को तो उनके कान में अल्लाह रसूल का नाम पैदा होते ही पढ़ने लगेगा, ये पूरा एक टॉपिक आगे आएगा। मगर खास आज का जो टॉपिक बन गया उसके हवाले से बात करो कि ऐसा ना हो कि आजादारी फकत इमामबाड़े तक है, आपका अगर बच्चा इमामबाड़े में आए तो उसको लगे कि हुसैन आ गए, और घर में जाए तो कुछ लगे ही नहीं, जैसे सारा साल वैसे 10 दिन भी टीवी वैसे ही चल रहा, अच्छे अच्छे खाने वैसे ही पकाए जा रहे हैं, नए नए कपड़े वैसे ही पहने जा रहे हैं। देखिए आज की दुनिया यकीनन बहुत आगे चली गई, और आप हराम और हलाल मुश्तैद और मर्जे फतवा और तौजीहुल मसाइल की बात भी करेंगे, लेकिन अगर पहले हम लोग 68 डेज इन चीजों का ख्याल करते थे, एटलीस्ट 11-12 मुहर्रम तक तो आपके बच्चे को पता चले कि वाकान गम है तो दिल से हम गम मना रहे हैं, ये ना हो कि गाड़ी में बैठ के आप निकले यहाँ गेट से बाहर हुए और बातों का अंदाज, लिबास का अंदाज, खाने का अंदाज जिंदगी के नॉर्मल है। आज भी दुनिया में कितनी जगह मोमिन है, पहले 12 दिन नए कपड़े नहीं पहनते, पहले 12 दिन बहुत अच्छे अच्छे खाने नहीं खाते, किसी किस्म का फ्रीड बच्चों को नहीं दिया जाता। चले पहले तो हम 68 डेज करते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट बच्चे को घर में भी पता चले कि आशूरा आ गया है, आजादारी का वक्त आ गया है, फातिमा जहरा ने बाल खोल के मातम करना शुरू कर दिए हैं, उसे ये ना लगे कि आजादारी खाली सेंटर तक है, उसे लगे आजादारी हर जगह है। जब ये लगेगा तो इराक के मोमिनीन की तरह, लबनान के मोमिनीन की तरह, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मोमिनीन की तरह से वो करबला वालों के रास्ते पर भी चलेगा। लेकिन अगर वो ये समझे कि आजादारी या करबला खाली सेंटर की दीवारों के अंदर है, इसके बाहर ना करबला है ना आजादारी है, तो वो कहां से अपनी ड्यूटीज अंजाम देगा। तो दो चीजें, एक आजादारी के पूरे इंस्टीट्यूशन पे अटैक, वो आपके यूथ को टारगेट बना के हो रहा, और एक आजादारी को लिमिटेड से लिमिटेड करके खाली इमामबाड़े तक रखो। यकीनन ऐसा माहौल घर का नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा सा कुछ बच्चे को ये लगे कि ये 10 दिन बाकी साल से ज़रा डिफरेंट डेज हैं, ये 10 दिन में मैं लेस्टर के मोमिनीन से कह रहा हूँ, वरना हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में अब तक एटलीस्ट हर महीने वरना 68 डेज तक फुल फ्लेज आजादारी ना सही, तब भी बच्चे को घर के अंदर इशारे मिलते रहते हैं। और याद रखिए भाई, ये जुमला एक मजलिस बनेगा तरबियत औलाद, याद रखिए बच्चा मस्जिद मदरसे और इमामबाड़े में बाद में सीखता है, पहले वो घर में सीखता है, पहले वो माँ की गोद में सीखता है, पहले वो नाना के पास जाके सीखता, पहला बच्चे का मदरसा उसका घर है, बाद में ये मदरसे आते हैं। और यही हुसैन का वो जुमला था जो हमारे मोहतरम इंग्लिश ऑरेटर ने भी अपनी इंग्लिश स्पीच के आखिर में बयान किया था कि नाना से हुसैन का जो वादा था, वो रात आ गई कि हमारे और आपके लिए भी जरा सी डिफरेंट रात तो है, तभी इतनी बड़ी तादाद में वर्किंग डे में लोग आ गए, लेकिन वाकान ये रात कैसी है ये कोई फातिमा जहरा के दिल से पूछे, वाकान ये रात जो आ रही है कौन से गम को लेके आ रही है, ये कोई सानिया जहरा ज़ैनब कुबरा से दरियाफ्त करे, अरे कोई जाके कब्र रसूल पे पैगंबर के रोने की आवाज सुने। 28 रजब की तारीख करबला का स्टार्टिंग पॉइंट है, जब मेरे आका हुसैन को अपना वो वादा पूरा करने के लिए जो अपने नाना से बचपने में किया था, और अपना वो मिशन पूरा करने के लिए जिसके लिए फातिमा ने गर्मियों में चक्कियां पीस पीस के अपने लाल हुसैन को पाला था। 10th ऑफ मुहर्रम को एक रिवायत डिटेल से पढ़ूंगा, उसका सिर्फ एक जुमला कि जब आखिरी रुख्सत के मौके पर नन्ही सकीना ने बाबा की गोद में लेट कर कहा, बाबा मैं आपको मख्तल में न जाने दूंगी, अरे मेरा सारा घर गया है, कोई वापिस नहीं आया है। और हुसैन की समझ में नहीं आ रहा था कि सकीना को कैसे राजी करे। एक बार सकीना की आंख लग गई और थोड़ी देर के बाद आंख खोली, कहा बाबा जाइए खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा सकीना अभी रोक रही हो, अभी भेज क्यों रही हो? कहा कि बाबा जैसे ही मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा आई है और कह रही है, ऐ सकीना मेरे हुसैन का रास्ता न रोक, वो वक्त आ गया जिसके लिए मैंने गर्मियों में चक्कियां पीस पीस के अपने लाल को पाला है। बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है, उसके नाना का घर है। हुसैन ने नाना के घर में भी ये सुना और माँ की गोद में भी यही पैगाम मिला, लाल जब इस्लाम पर वक्त पड़े तो तुम्हें अपनी जान कुर्बान करना है। यही वजह है कि कर्बला जाते वक्त हुसैन ने खाली जिंदों को खुदा हाफिज ना कहा, माँ की कब्र पे भी गए और कहा माँ तेरा हुसैन जा रहा है, आखिरी सलाम करने आया है, खुदा हाफिज। लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई ताज्जुब नहीं है, फातिमा की कब्र से आवाज आई हो, लाल खाली तू नहीं जा रहा है, तेरी माँ भी तेरे साथ चल रही है। अरे तू कर्बला जाएगा तो फातिमा कर्बला भी पहुंचेगी, अरे मेरी बेटी शाम जाएगी तो फातिमा शाम भी पहुंचेगी। और फिर आखिर में पलट के आते रोज़े रसूल पर, एक बार मेरा आका हुसैन नाना की कब्र पे पहुंचता है, पहले तो उस तरह सलाम किया जैसे आप सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या जद्दा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाना आपका हुसैन आपको अलविदाई सलाम करने आ रहा है, अरे मेरा आखिरी सलाम लो, नाना खुदा हाफिज। ये कह के हुसैन चला, मगर आजादारो फिर हुसैन पलट के ना आया। हुसैन की बहन ज़ैनब नाना की कब्र पे वापिस आती है और कहती है, नाना मेरा माँ जाया तुझे सलाम करके गया था, वो तो कर्बला में रह गया, मैं उसकी तरफ से एक तोहफा लेके आई हूँ। और ये कह के ज़ैनब ने हुसैन का खून भरा कुर्ता रसूल की कब्र पे बिछा दिया। रावी कहता है कब्र से रसूल के रोने की आवाज आने लगी, मस्जिद नबवी की दीवारें हिलने लगी। ज़ैनब ने कहा, नाना ये तो पहला तोहफा था, अरे दूसरा तोहफा तो मैं तुझे दिखा भी नहीं सकती। अरे नाना मेरी कमर, कर्बला से शाम तेरी ज़ैनब ने इतने कोड़े खाए हैं, अब तक कोड़ों के जख्म ताजा नजर आ रहे हैं। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। खुदा बंदा मेरे मजलूम आका हुसैन के अपने नाना को अलविदाई सलाम कहकर कर्बला की कुर्बानियों का वास्ता हमें भी हर दौर और हर जमाने में जिस जगह पे हम बैठे कर्बला के हवाले से अपनी ड्यूटीज अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारे इन आंसुओं का वास्ता जो हमारी आंखों से निकले, इन्हें रुमाल ज़हरा में जमा करके रोज़े क़यामत हमारी शफाअत का जरिया बना। परवरदिगारा इस मजलिस में जो मोमिनीन और मोमिनात आए हैं, खुदावंदा इनकी आज़ादारी का इन्हें ख़मे हुसैन के सिवा दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा मैदान कर्बला के बिखरे लाशों का वास्ता हमारे तमाम मरहूमीन को आले इल्लीन में रसूल और आले रसूल के जवार से मुलक फरमा। और खुदावंदा इन मजालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।